أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب قلندر شعور صفحہ نمبر 30 سے ہم آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. گزشتہ ریڈنگ میں ہم نے اس کا جو آخری پیرا تھا کہ مسلسل توجہ دینے سے ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے اور ہمارے سراپا کا مصنوعی پرت انا کی گرفت سے آزاد ہو کر ضرورت کے مطابق ہر چیز دیکھتا، سمجھتا اور ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے. اس نقطے کو آپ جتنا توجہ دیں گے اتنا آپ کو آسانی ہوگی. توجہ کبھی لمحاتی اور وقتی اثر نہیں کرتی. یہ لفظ ہے مسلسل توجہ دینے سے، یعنی ارتکاز توجہ اتنا ہو کہ لگاتار آپ ایک ہی نقطے پہ توجہ کو مرکوز رکھ سکے. ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں دنیاوی معاملات سے ذرا آزاد ہونا پڑتا ہے. تو بہرحال آج کا عنوان ہے مثالی معاشرہ. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حیوانات میں زندگی گزارنے کی قدریں بھی انسان کی معاشرتی زندگی سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں، جو ہمیں حیوانات کی عقلی بیداری کا ثبوت فراہم کرتی ہیں. جن کی چند مثالیں ہدیہ کارین. دیکھیے، حیوانات بھی معاشرتی زندگی سے معاشرتی نظام رکھتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ حیوانات کا معاشرتی نظام، آپ یہ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانی معاشروں سے وہ کہیں بدرجہ آرگنائزڈ ہیں. تو اس طرف متوجہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حیوانات کی عقلی بیداری کا ثبوت فراہم کرتی کہ ہم حیوانات جتنے بھی عقلی طور پہ بیدار نہیں ہیں. حضور نے لکھا ہے کہ اس کی ایک مثال حشرات الارض کے خاندان کے ایک فرد شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھیاں، جسے ہنی بیز کہتے ہیں، اپنی پوری فیملی ایک کالونی میں موم کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہشت پہلو کمروں پر مشتمل ایک چھتے میں رہتی ہیں. ہشت پہلو کا مطلب ہے کہ اس خانے کے آٹھ وہ پہلو ہوتے ہیں، یا آٹھ سائڈیں ہوتی ہیں، یا آٹھ دیواریں. ہشت آٹھ کو کہتے ہیں. ان سب میں ایک ملکہ ہوتی ہے. ریایا میں تقریباً 2000 نر مکھیاں ہوتی ہیں. ان کے علاوہ مادہ مکھیاں ہوتی ہیں. ان کی تعداد ایک چھتے میں 20,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے. اب کارکن مکھیاں مادہ ہونے کے باوجود انڈے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی 20,000 کارکن مکھیاں اپنے سٹرکچر میں اپنی جنس کے حوالے سے مادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ انڈے نہیں دیتی. وہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، وہ سسٹم آن نہیں ہوا. ملکہ دوسری تمام مکھیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. یہ ہر وقت چھتے کے اندر رہتی ہے. یعنی باقی مکھیاں چھتے سے باہر بھی کام کرتی ہیں، پھولوں تک جاتی ہیں، رس لاتی ہیں، یہ سارا، لیکن ملکہ اندر ہی رہتی ہے. ملکہ ایک دن میں تقریباً 1,000 سے 2,000 تک انڈے دیتی ہے. اندازہ کریں کہ اگر 2,000 انڈے ہوں تو 24 گھنٹے میں اس نے ہر گھنٹے میں کتنے انڈے دیے. انڈے دو قسم کے ہوتے ہیں. اس کے پھر دیکھیں، یہ شعور کا وہ زاویہ مرشد کریم دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم مکھیوں کے سوسائٹی پہ غور کریں تو اس کا پورا سٹرکچر کس طرح سمجھیں گے. بات چلتی ہے مکھیوں پہ، پھر ملکہ پہ آئی، اس کے انڈوں پہ آئی، اور انڈوں کی قسمیں بتا رہے ہیں. एक मुकम्मल अंडे जिनको फर्टिलाइज्ड एग कहा है और दूसरे नामुकम्मल अंडे जिनको अनफर्टिलाइज्ड एग्स कहा जाता है। मुकम्मल अंडों से मलका और कारकुन मक्खियां निकलती हैं, जबकि नामुकम्मल अंडों से नर मक्खियां निकलती हैं। अब चंद मक्खियां हर वक्त मलका की खिदमत के लिए मौजूद रहती हैं और ये मक्खियां हर तरह से मलका का ख्याल रखती हैं। मलका की औसत उम्र 3 साल होती है। मलका जब तक इंतजामी अमूर एहसन तरीके पर अंजाम देती रहती है, मुहाफिज मक्खियां उसकी हर तरह से खिदमत करती हैं। लेकिन मलका जब अपने फराइज से गफलत बरतने लगती है या बूढ़ी हो जाती है तो यही मुहाफिज मक्खियां उसके गिर्द जमा हो जाती हैं और तमाम मक्खियां मिलकर मलका पर हमला कर देती हैं और डंक मार मार कर मलका को हलाक कर देती हैं। अब जरा गौर करें कि मलका मक्खी इंतजामी अमूर एहसन तरीके पर अंजाम देती है, तो उसके इंतजामी अमूर क्या हैं? उसने मतलब है कि सारा एक निजाम जो है वो बेसिकली मलका का काम अंडे देना है। वो अंडे देने के लिए मेटिंग करेगी, उसके बाद वो खाना खाएगी, जो भी उसका जब वो छत्ते से बाहर नहीं जाती तो उसका फुजला भी हटेगा, तो ये बाकी मक्खियां सारा ये सारा उसका निजाम चला करने में उसकी मदद करती ताकि वो अंडे देती रहे। जब वो बूढ़ी हो जाती है और मजीद अंडे नहीं देती तो वो फिर मक्खियां मलका को कत्ल कर देती हैं या हलाक कर देती हैं। और फिर मलका की हलाकत की खबर पूरी कॉलोनी को देने के लिए चंद मक्खियां खास आवाज निकालती हैं और आवाज निकालते वक्त छत्ते के गिर्द कई चक्कर काटती हैं। मलका की तबई उम्र 3 साल होती है। नई मलका की तकर्री के लिए कारकुन मक्खियां जो हैं वो अंडों में से 3 दिन पुराने मुकम्मल अंडे तलाश करके ले आती हैं। कुछ दिनों के बाद अंडों से कीड़े निकल आते हैं जिसे लार्वा कहते हैं। कारकुन मक्खियां उन्हें यानी उन लार्वास को फूलों के जमा किए हुए जरे गुल खिलाती और फूलों का रस पिलाती हैं। ये जो जरे गुल खिलाती हैं और फूलों का रस पिलाती हैं इसी को रॉयल जेली कहते हैं। कुछ दिनों के बाद इन कीड़ों यानी लार्वों से ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, वो उसे कोया कहते हैं, कोकून कहते हैं। उस गिलाफ से ढके हुए कीड़े को प्यूपा कहते हैं। मक्खियां प्यूपे के खानों को मोम लगाकर बंद कर देती हैं। 15 दिन के बाद प्यूपा एक बालिग मक्खी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और मोम हटाकर खानों से बाहर निकल आते हैं। उनमें से एक का तकरर बहैसियत मलका होता है और बाकी मलका मक्खियां उड़ जाती हैं और जाकर हर मलका जो है फिर अपना अलहदा अलहदा छत्ता बना लेती है। अब कारकुन मक्खियां मलका से कदरे छोटी होती हैं। कारकुन मक्खियों की औसत उम्र 2 माह होती है। अब गौर करें औसत उम्र सिर्फ 2 माह है, मलका की 3 साल है और वो 2 माह की मुख्तसर मुद्दत मेहनत और मुशक्कत करते गुजर जाती है। यानी एक मलका जो है वो 1 साल में 6 नस्लें मक्खियों की कारकुन मक्खियों की देखती है और 3 साल में गोया उसने 18 नस्लें देखी। अंडों से निकलने के 3रे दिन से कारकुन मक्खियां अपना काम शुरू कर देती हैं। अब देखें उनके अंदर कितना वो सिस्टम है कि वो जो पैदा होती हैं जो मरती हैं वो फौरन पैदा होने वाली मरी हुई मक्खियों की जगह काम करना शुरू कर देती हैं। यही मक्खियां छत्ता तैयार करती हैं यानी कारकुन मक्खियां। कारकुन मक्खियों के अंदर मोम पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो मोम पैदा करते हैं और ये मोम छत्ता तैयार करने में काम आता है। ये छत्ता कई हिस्सों में तकसीम होता है, छत्ते का दरमियानी हिस्सा जो तमाम खानों से बड़ा और हवादार होता है, मलका के लिए मखसूस होता है। छत्ते में नर मक्खियों के लिए सैकड़ों खाने होते हैं, क्योंकि 2000 की तादाद है, तो उनमें सैकड़ों खाने तो नर मक्खियों के लिए होते हैं। मादा मक्खियों के लिए बेशुमार घरों के अलावा शहद को जखीरा करने के कई गोदाम होते हैं, और फूलों के जर्दानों के लिए अलग गोदाम होते हैं जो मक्खियों की खुराक बनते हैं। अब शहद कैसे बनता है, जरा इस पे भी नजर डाली है उन्होंने कि तमाम मक्खियों के लिए खुराक का इंतजाम करना इन्हीं कारकुन मक्खियों की जिम्मेदारी होती है। यानी जो छत्ते में नर मक्खियां हैं, मलका मक्खी है, या जितनी भी कारकुन मक्खियां खुद खाना खाती हैं, वो सब यही नर कारकुन मक्खियां अरेंज करती हैं। यही मक्खियां छतों से फूलों के रस को तलाश के लिए निकल खड़ी होती हैं, और फिर उस रस से शहद तैयार करती हैं। मक्खियां मुख्तलिफ फूलों पर बैठ जाती हैं, फूलों की अंदरूनी सतह पर मौजूद हल्की मिठास को अपनी जबान से रगड़ती हैं। उस रगड़ के नतीजे में मिठास जबान पर मुंतकिल हो जाती है, और ये मिठास मक्खी के मैदा नुमा थैली में जमा होती रहती है। ये मुख्तसर सी थैली जब फूलों के रस से भर जाती है, इस काम से फारिग होकर ये मक्खी फूलों के जरे गुल को इकट्ठा करके अपने पिछले पांव में मौजूद कुदरती टोकरियों को भर लेती है। सैक्स बने होते हैं उसमें। मक्खी इस तमाम कार्रवाई के बाद अपने छत्ते पर वापस आ जाती है। छत्ते में पहुंचते ही मक्खी मोम के खाने में घुस जाती है और जरे गुल को गोदामों में मुंतकिल कर देती है। इस असना में फूलों का वो रस जो मैदा नुमा थैली में जमा होता है, कई कीमियावी तब्दीलियों के बाद शहद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शहद को गोदामों में महफूज करके मोम से सील कर दिया जाता है, ताकि मौसम में सरमा में मक्खियां इस शहद को अपने इस्तेमाल में ला सकें। लेकिन हजरत इंसान मक्खियों से नज़र बचा कर ले उठते हैं, और बेचारी मक्खियां शहद की इस चोरी के बाद फिर उसी मुस्तादी और मेहनत से शहद बनाने में मसरूफ हो जाती हैं। नर मक्खियां निहायत काहिल होती हैं, ये मलका के शौहर के फराइज अंजाम देती हैं। जब मलका बाले हो जाती है तो अपने छत्ते से उड़ती है, नर मक्खियां उसके ताकुब में उड़ती हैं, और उनमें से एक नर मक्खी मलका को हमला करने में कामयाब हो जाती है। सेक्स के अलावा नर मक्खियां कोई काम नहीं करती। मलका के अंडे देने के बाद नर मक्खियां अपनी तबई मौत मर जाती हैं। ये देखें शहद की मक्खी के हवाले से हम कितनी डिटेल्स उन्होंने फरमा दी। अब इनमें हमारे लिए गौर फिक्र की क्या बात है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखें, डिवीजन ऑफ वर्क देखें, नज्म व नस्क देखें कि फराइज किस तरह से तकसीम शुदा हैं, और वो सारे अपने अपने फराइज में नामाक रखते हैं। इंसानी मुआशरे में सारे अपने अपने हकूक का बाजा बजाते। ये बगैर कहे जो मैसेज है वो इसमें ये दिया गया है। अब फहमो फिरासत पे गौर करें, यानी शहद की मक्खियों की फहमो फिरासत गौर करें। गर्मी के दिनों में गर्मी की शिद्दत से मोम नरम पड़ जाने का खतरा होता है, लेकिन ये नन्ना कीड़ा अपनी अकलमंदी की वजह से अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेता है। होता यूं है कि गर्मियों के दिनों में तमाम कारकुन मक्खियां छत्ते के तमाम खानों के किनारों पर इस तरह बैठ जाती हैं कि उनके पर खानों से बाहर रहे। अब परों को तेजी से हरकत दी जाती है, परों से पंखों का काम लेते हुए हवा को ठंडा करके अंदर भेजा जाता है, जिससे टेम्परेचर गिर जाता है, और मक्खियों के घर गर्मी की तपश से महफूज रहते हैं। अल्लाह ने मक्खी को ये सलाहियत वही की है। अब ये कुरान के अल्फाज हैं कि हमने शहद की मक्खी को वही की कि मक्खी ऐसे फूलों का अरक नहीं चूसती जो बीमार या जहरीला हो। बीमार फूल और जहरीले फूल, इसको वो आइडेंटिफाई कर सकती है। हमेशा वो ऐसे फूलों का इंतखाब करती है जिन फूलों के जरिए जमीन से सेहत बख्श अरक कशीद होता है। यही वजह है कि शहद बेशुमार इमराज का इलाज है। अब जरा गौर करें कि गर्मी में 12 घंटे 15 घंटे 10 घंटे लगातार वो मक्खियां पर हिला रही हैं और हवा जो है वो छत्ते की ठंडी होकर अंदर जा रही है। अब अगला टॉपिक है अकलमंद चींटी। अब आपने मक्खियों का हाल देखा, आप चींटियों का सुन लीजिए। चींटी जैसी इंतहाई छोटी मखलूक की अकल का अंदाजा इस वाक्य से लगाया जा सकता है कि एक चींटी ने हजरत सुलेमान के लश्कर की दावत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जलील कदर पैगंबर और अजीम बादशाह गुजरे, आपके लश्कर में इंसानों के अलावा जिन्नात चरिंद परिंद दरिंद सभी शामिल थे। आपको हवाओं और मौसमों पर पूरा तसर्रुफ हासिल था। हजरत सुलेमान ने चींटी को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और पूछा, बता तेरी सल्तनत वसी है या मेरी? चींटी ने कहा, किसकी सल्तनत पुरअजमत है ये बात तो अल्लाह को मालूम है, मगर मैं ये जानती हूं कि इस वक्त मेरा तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ है। अब हाजर जवाबी, जरा गौर करें, चींटियों को भी इतना शऊर है। अब ये गुफ्तगु चींटी के अना की लहरों के जरिए, हजरत सुलेमान की अना की लहरों से हो रही थी। इसको कुरान ने रिपोर्ट कर दिया। फरमा रवा चींटी। अब हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के सबसे छोटे बेटे थे। 965 कबले ईस्वी में हजरत दाऊद के जानशीन हुए। तकरीबन 40 साल फरमा रवा रहे। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने हैवानात की बोलियां समझने का इल्म दिया था। एक मर्तबा हजरत सुलेमान जिनो इंस और हैवानात के अजीम लश्कर के जलूस में किसी जगह तशरीफ ले जा रहे थे। लश्कर की कसरत के बावजूद किसी की ये मजाल न थी कि अपने दर्जे रुतबे के खिलाफ आगे पीछे होकर बेतरतीबी का मुर्तकिब हो सके। गौर करें जरा कि बेतरतीबी को किस दर्जे कंट्रोल किया हुआ था। सब फरमा बरदार लश्करियों की तरह हजरत सुलेमान की अजमत और हैबत से अपने अपने करीने से फौज दर फौज चल रहे थे कि लश्कर चलते चलते ऐसी वादी में पहुंचा जहां चींटियां बेशुमार थीं और पूरी वादी उनका मस्कन बनी हुई थी। चींटियों के बादशाह ने लश्कर के इस कसीर अंबोह को देखकर अपनी रियाया से कहा, तुम फौरन अपने अपने बिलों में घुस जाओ। सुलेमान और उनके लश्कर को क्या मालूम कि तुम इस कसरत से वादी की जमीन पर रींग रही हो, ना मालूम उनके घोड़ों और प्यादों के कदमों के नीचे तुम में से कितनी तादाद बेखबरी में रौंदी जाए। अब अल्लाह ने ये वाक्या इस तरह बयान किया है, यानी कुरान में जो आया उसका ये तर्जमा दिया जा रहा है। और बेशक हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन दोनों ने कहा, तारीफ है अल्लाह के लिए जिसने हमको बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। उसने कहा, यानी हजरत सुलेमान ने कहा, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोलियों का इल्म दिया गया और हमारे लिए हर शय मुहैया कर दी गई है, बेशक ये खुला हुआ फजल है। और जमा हुआ लश्कर सुलेमान के लिए जिनो इंस और परिंदों का, और वो दर्जा ब दर्जा एक नज्म और जब्त के साथ आगे पीछे चल रहे थे, यहां तक कि वो वादी नमल में पहुंचे। तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुमको रौंद डाले। चींटी की ये बात सुनकर सुलेमान हंस पड़े और कहा, ए परवरदिगार, मुझको तौफीक दे के मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے قرآن کی، رب ازینی نشکر نعمت اکلتی انمت علیہ والا والدیہ وغیرہ۔ اب اس سے جو نتیجہ نہ اخذ کیا ہے وہ ذرا سنتے جائیے۔ چیونٹیوں جیسی ننی مخلوق کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے، اس ننے سے حشرات الارض میں وہ تمام نظام ہائے زندگی موجود ہیں جو حضرت انسان کی زندگی میں داخل ہیں۔ چیونٹیوں کا خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں مختلف شکل رنگ روپ کی چیونٹیاں ہوتی ہیں، پورے خاندان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، پوری آبادی میں اس کا حکم چلتا ہے اور ہر رکن اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آبادی میں فنکار چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ماہر باغبانی بھی ہوتے ہیں، ان کی فوج بھی ہوتی ہے، ان میں ایثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ تمام اراکین اپنے فرائض مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔ چیونٹیوں میں نر یعنی میل اور مادہ یعنی فیمیل دونوں ہوتی ہیں، لیکن ملکہ کے سوا کوئی اور چیونٹی تولید کا کام انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے اندر وہ سسٹم نہیں لگایا، اللہ نے تولیدی نظام نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اگر اتفاقاً ملکہ مر جائے تو شہد کی ملکہ کی طرح نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسری کالونی میں ضم ہو جاتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونی تقسیم کار یعنی ڈویژن آف ورک کا نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ مختلف شکل و صورت کی چیونٹیوں میں کام منقسم ہوتا ہے، یعنی کام کے مطابق ان کی شکل و صورت بن جاتی ہے، گویا یہ ان کی یونیفارم ہو گئی، اور سب فرائض کی تکمیل پوری دیانتداری سے انجام دیتی ہیں۔ دوبارہ سن لیجیے، یہ دوسرا دفعہ ہے، فرائض کی تکمیل پوری دیانتداری سے۔ اب انسان کیا کرتا ہے کمپیئر کر لیجیے، کارکن غذا مہیا کرنے اور نئی نسل کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کا کام کرتے ہیں، مزدور بار برداری کا کام کرتے ہیں، نر تناسل کا کام انجام دیتے ہیں، اور ان کا وجود اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ملکہ حاملہ نہ ہو جائے، اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب شہد کی قسمیں جو ہیں، چیونٹیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے شہد بھری چیونٹی۔ چیونٹی کی ایک قسم شہد کی چیونٹی ہنی آنٹ ہوتی ہے، جو پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کر لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں الٹی لٹک جاتی ہے، اور دوسری چیونٹیاں ملکہ اور بچے اس کا رس چاٹتے، اور یہ بیچاری جذبہ ایثار و الفت میں معلق رہتی ہے تا وقت کہ تمام شہد ختم ہو جائے۔ اب اسی طرح چیونٹیوں کی ایک قسم ہے باغبان چیونٹیاں۔ ایک قسم باغبان چیونٹیوں کی ہوتی ہے جو باغ لگاتی ہے، یہ باغ پھپھوند کے ہوتے ہیں، جسے آپ پھلی لگنا بھی کہتے ہیں، اسے الجی بھی کہتے ہیں، فنگس بھی کہتے ہیں، یہ باغ پھپھوند کے ہوتے ہیں۔ یہ کمال مہارت سے باغوں کی افزائش اور پرداخت کرتی ہیں، اور یہ باغ مکان کی گیلریوں اور خانوں میں لگائے جاتے ہیں، یعنی ان کا جو مکان ہوتا ہے جہاں وہ رہتی ہیں، جس کو بل کہتے ہیں۔ چیونٹیوں کے لیے یہ باغ پھلوں کے باغات کا کام کرتے ہیں، اس لیے چیونٹیاں ان باغات کو غذا کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور یہ غذا آبادی کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مزدور چیونٹیاں، مزدور چیونٹیاں غلہ جمع کرتی ہیں، اس کو خانوں میں ذخیرہ کرتی ہیں، جو ضرورت پڑنے پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ مزدور چیونٹیاں اتنی محنتی اور جفا کش ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اپنے جسم سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا کر لے آتی ہیں، یعنی وہ اپنے فرائض کی بجاوری میں اس حد تک محنت کرتی ہیں۔ اسی طرح انجینئر چیونٹیاں، इंजीनियर चींटियां अपनी हुनरमंदी का आला नमूना पेश करती हैं, ये दरमियान में एक बड़ा सा कमरा बनाती हैं, यानी जो बिल बनाती हैं तो दरमियान में सेंटर में एक बड़ा सा कमरा होता है जो शाही महल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये कमरा इंतहाई साफ सुथरा रखा जाता है। उसमें मलका कयाम करती है, मजदूर और कारकुन दोनों मलका की खिदमत गुजारी में मसरूफ रहते हैं। ये शाही महल गैलरियों के जरिए हर तरफ से मिला होता है। इन गैलरियों में जगह जगह आम खाने होते हैं जिनमें या तो गजा का जखीरा होता है या मजदूर कारकुन रहते हैं। उनका ये किला इतना मजबूत होता है कि इस पर पानी का कोई असर नहीं होता, और शदीद तपश भी उस पर असर अंदाज नहीं होती। अब ये दोनों बातें, हवा का गुजर, पानी का असर ना होना और शदीद तपश, ये सब इंजीनियरिंग का कमालात है। इसी तरह एक चींटी है दर्जी चींटियां, चींटियों में माहिर दर्जी भी होती हैं, ये ज्यादातर जंगलों में रहती हैं और दरख्तों पर बसेरा करती हैं। इनके कारकुन बड़ी महारत से पत्तों का कोया यानी कोकून बनाकर अंडों से निकलने वाले छोटे कीड़े यानी लार्वे जो हैं उनमें हिफाजत से रख देते हैं, और इस तरह ये परिंदों के हमलों से महफूज रहती हैं। ये चींटियां सीने परोने में इस कदर माहिर होती हैं कि इनकी जोड़ी हुई कोई चीज ऐसी मालूम होती है जैसे किसी माहिर दर्जी ने सिलाई की हो। अब इसी तरह एक चींटियों की किस्म है साइंसदान चींटियां, एक किस्म फौजी चींटियों की होती है जो ज्यादातर खाना बदोश होती हैं। उनके तौर तरीके फौजियों से मिलते जुलते हैं। जिस तरह फौजी जिंदगी कैंपों और जंगलों में बसर होती है, इसी तरह का तर्ज रिहाइश इनका भी है। ये चींटियां एक काफले की शक्ल में सफर करती हैं। मलका अपने मुसाहिबीन के वस्त में होती है। दिन भर ये काफला रवानदवा रहता है और जो कीड़ा इनके रास्ते में हायल होता है मुहाफिज चींटियां उन्हें हलाक कर देती हैं। रात के वक्त किसी दरख्त पर एक सतून की शक्ल में जमा हो जाती हैं। इनके इकट्ठे होने का अंदाज बहुत दिलचस्प होता है। मलका और उसके मुसाहिबीन वस्त में होते हैं और इर्द गिर्द कारकुन और सिपाही होते हैं। इकट्ठे होते वक्त ये गैलरियों की तरह दरमियान में रास्ता छोड़ती जाती हैं ताकि हवा का गुजर हो सके। गोया तनफ्फुस के साइंसी असूलों से भी वाकिफ होती हैं। रात भर इसी तरह आराम करती हैं और सूरज तुलू होते ही उनमें से एक दर्जन चींटियां अलहदा हो जाती हैं और चलना शुरू कर देती हैं। इनके चलते ही दूसरी चींटियां भी उनके हमरा हो जाती हैं और इस तरह ये काफिला फिर रवानदवा हो जाता है। इसके बाद टाइम एंड स्पेस से आजाद चींटी की बात आने लगी है कि चींटियों में एक किस्म ऐसी चींटियों की होती है जिनमें हवा में तहलील होने और फासलों को हजफ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की गैर मामूली सलाहियत होती है। अब देखें ये कितनी बड़ी रूहानी सलाहियत जो है ये चींटियों को में भी है और वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं। साइंसदानों के सैकड़ों तजुर्बात की रोशनी में ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि इन चींटियों में हवा में तहलील होने की सलाहियत मौजूद होती है। अंडे देने का वक्त आता है तो मलका का जिस्म बड़ा हो जाता है, फिर मुसाहिबीन और कारकुन मलका की ज्यादा खिदमत करने लगते हैं, और मलका के अंडे देने के बाद नई आबादी जहूर में आती है। मलका 6-7 दिनों में 20 से 30 तक अंडे देती है जिनको कारकुन बड़ी मुस्तादी से मलका के जिस्म से अलहदा करते हैं और फिर अंडों को एक जगह हिफाजत से रख दिया जाता है। चंद दिनों में अंडों से छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं, वही लार्वास, और आहिस्ता आहिस्ता बालिग चींटियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जहां तक मलका का ताल्लुक है, तकरीबन निसब दर्जन अंडे ऐसे होते हैं जिनकी देखभाल कारकुन खसूसी तौर पर करते हैं। उनमें 5-6 मलकाएं निकलती हैं जिनके नतीजे में पुरानी आबादी के अफराद 6 या 7 हिस्सों में तकसीम होकर अपनी अपनी मलका के गिर जमा हो जाते हैं। फिर हर मलका के कारकुन अतात गुजारी और खिदमत गुजारी में इंतहा कर देते हैं। ये नन्ना सा हशरा इस कदर नज्म व ज़ब्त और तआवुन से किस तरह काम करता है, और इसको नज्म व ज़ब्त और तआवुन ने बाहमी से रहने का तरीका कुदरत इंस्पायर करती है। इस नज्म व ज़ब्त को किसी भी तरह अक्ल व शऊर के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है यहाँ रुक जाते हैं। आप ये देखें कि ये चींटियों का किस्सा सुनाकर बीच बीच में क्या बातें तालीम की गई हैं, कि सबसे बड़ी बात जो बताई गई है कि सब अतात गुजारी और खिदमत गुजारी के जज्बे से काम करते हैं, और नज्म व ज़ब्त और बाहमी तआवुन। अब ज़रा गौर कीजिए, क्या हम इंसानों में ये चीज़ें हैं? ठीक हो गए डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है आपका टाइम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, इसलिए अगर बहरहाल कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। जी
डॉक्टर साहब।
जी भाई।
अच्छा, किसी भी माशे की बुनियाद अदल के ऊपर होती है। आशा शिर्क पर तो कायम रह सकता है, लेकिन ना इंसाफी की बुनियाद पे नहीं रह सकता।
ये जुमलेबाजी है, ये सियासी जुमलेबाजी है। देखिए, असल चीज नज्म व नस्क है, असल चीज अतात गुजारी और अपने फराइज में इन्हमाक है। गौर करें जरा, ये जो अदल है, अदल का असल मतलब क्या है? कि आप अपने फराइज तो पूरे करते नहीं। हम अगर अपने फराइज में इन्हमाक रखें तो अदल ही अदल है। अदल का असल मतलब क्या है भाई? हम लोग ये जिम्मेदारी दूसरों को देकर अपने हकूक का बाजा बजा रहे हैं, ये अप्रोच ही गलत है। कलंदर शऊर का ज़हन हासिल करना है तो आपको ये बात समझनी है कि भाई यहाँ सारा निज़ाम सिवाय अल्लाह की बात को समझने के और उसके मुताबिक अपने फराइज में नमाज के कुछ नहीं है। ये मुआशरे जो अल्लाह के निज़ाम पे चले वही अदल पे है। जो नज्म व नस्क कंट्रोल कर सके वही उनका तारीख में किस्सा मिलता है। हजरत सुलेमान का तस्करा देखें, उन्होंने साफ बताया 40 साल हुकूमत की। क्या मतलब हुआ? यहाँ साजिशों से निजात नहीं है। एक बंदा बादशाह बनता है तो 10 बंदे जो हैं उसको गिराने में लग जाते। नज्म व नस्क का फुकदान है इंसानी मुआशरे में। और ये जो कंपैरिजन दिया जा रहा है कि हम चींटियों जितना तो शऊर रखते नहीं है और चले अशरफुल मखलूकात बनने, ये बातें इसलिए बताई की जा रही हैं कि शहद की मक्खी का जिंदगी देखें, उसका मुआशरत देखें, उसका तर्ज मुआशरत जो है वो इंसानों की निस्बत किस कदर सुपीरियर है। हालांकि वो बेचारी पैर के नीचे आ जाती हैं किसी के, तो सैकड़ों की तादाद में वो एक ही पैर तले आके कुचली जाती हैं। इतना छोटा सा हशर है। तो ये जो इज्तमाई शऊर है ना, हम उसी से वाकिफ नहीं है। नोई शऊर से हम वागा नहीं है। फिर कायनाती शऊर है, यही बात कलंदर शऊर हमें क्या किन बातों की तरफ मतवजो कर रहा है कि हम अपनी जात से ही फारग नहीं है। यहाँ जिसको थोड़ा सा पता चले कि ये कोई रूहानियत जानता है, लोग उसके पास आते हैं पेट दर्द का इलाज बता दो।
सही फरमाया।
तो ये नज्म व नस्क फराइज में इन्हमाक। जी क्या फरमाया?
सही फरमाया,
बहुत शुक्रिया। देखे ना, ये बातें जो हैं हमें इसका खुलासा करना है कि इन बातों के बयान करने का असल मकसद क्या है, कि हम जरा तफक्कुर तो करें, गौर तो करें कि भाई हमारे मुआशरे में और चींटी और मक्खी, शहद की मक्खी, इसी तरह दीमक है, इसी तरह दीगर तमाम जानवरों के निज़ाम ज़िंदगी को देखें, वो अपनी इंस्पायरेशन पे चल रहे हैं, इसीलिए वो सजा और जजा के मुस्तहिक नहीं है। आपको हमें अल्लाह ने चूंकि इख्तियार दे दिया कि आप चाहे अल्लाह की इंस्पायरेशन को कबूल करें या ना करें, दोनों सूरतें कुरान ने वाज़े तौर पे बता दी कि अगर आप अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक चलते हैं तो यू विल बी ब्लेस्ड, अगर आप अपने सिस्टम के मुताबिक चलते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने। इसीलिए तो अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान हकीम में साफ कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए भाई तुम्हारा निज़ाम है, जो मर्जी करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको इजाज़त दे दी, खुली छुट्टी दे दी। अब ये आगे आप अपने शऊर को, अच्छा मज़े की बात यह कि उसकी हदायत के लिए कितना इंतज़ाम किया, अंबिया कराम भेजे, फिर अंबिया कराम के वारिस औलिया कराम का ड्यूटी लग गई कि वो आपको और मुझे ये बात समझाएं कि बाज आ जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। ठीक हो गया सर?
नहीं हो गया।
चले खुश रहो।
थैंक यू सो मच सर।
अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। अब सैटरडे को होगी।